प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। करिश्मा, विद फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा ऑलरेडी ओवर, द प्रिपरेशन फॉर दिवाली एंड छठ आर नाउ अंडर वे एंड अलॉन्ग विद इट द वेडिंग सीजन हैज ऑल्सो स्टार्टेड एंड नॉट टू फॉरगेट द करवा चौथ विच इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन दिल्ली एंड नॉर्दर्न इंडिया इज ऑल्सो देयर tomorrow. The market is buzzing with activities. The holiday season is still some time away, but people in some regions may be starting to prepare for the Christmas and the New Year celebrations in December. So this period is marked by cultural and public celebrations, family gatherings, elaborate home decorations and festive shopping as well. While we keep enjoying the celebrations and festivals, we also keep you updated with the news making headlines and also on all the developments going on around us. So shall we begin with the news headlines now, Karishma?
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंक की डिफेंस अग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन ऑपरेशनल पार्टनरशिप बिटवीन टू आर्म्ड फोर्सेज।
भारत ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण का स्वागत किया, कहा कि यह स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेटिंग राइवल पार्टीज और कैंडिडेट्स इन बिहार असेंबली पोल्स।
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3% रहने का अनुमान व्यक्त किया।
And now after the news headlines, Karishma, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Post Day and also about the vibrant Gujarat conference.
Ji.
So namaskar, Kem Cho listeners, and welcome to this special feature, Vibrant Gujarat. And today we are taking you straight to Mehsana, the heart of North Gujarat, where history, industry and innovation converge. For the first time ever, the Vibrant Gujarat Regional Conference is being hosted here, marking a significant step in taking the Viksit Bharat at 2047 vision to the grassroots level. So a vibrant song for Vibrant Gujarat. Welcome. The grand inaugural session will be graced by none other than Chief Minister Bhupendra Patel and Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw. Together, they will flag off a two-day extravaganza of ideas, investments and international collaboration.
बिल्कुल, तो अब एजेंडे में क्या है इसे समझते हैं। दरअसल डेयरी फार्मों से लेकर उच्च तकनीक वाले ऑटो पार्ट्स तक और जीरे के खेतों से लेकर सौर पार्कों तक उत्तर गुजरात अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। 13,000 से ज्यादा प्रतिभागियों, जिनमें 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं, उनके साथ यह सम्मेलन ऊर्जा से भरपूर है। मेहसाणा सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं, यह एक मंच है। स्थानीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए कुल 33 सेमिनार, B2B और B2G बैठकें और एक विशेष MSME कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और नीदरलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विश्व बैंक और जैक्रो जैसे वैश्विक संगठन भी यहाँ मौजूद हैं।
And if you're thinking it's all talks and no show, think again. A massive regional exhibition spread over 18,000 square meters is showcasing the pride of North Gujarat, from agro produce like cumin, fennel and isabgol to dairy products and automobile components. This is a golden opportunity for all of us. With international buyers from over 40 countries attending the reverse buyer-seller meet, we are hopeful about new export deals. Our cumin and dairy products are already world class. Isn't it, Karishma?
बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रिवर्स क्रेता विक्रेता सम्मेलन सबसे प्रतीक्षित आकर्षणों में से एक है, जो स्थानीय उद्यमियों को वास्तविक समय से निर्यात के अवसर भी प्रदान करता है। और यह केवल व्यवसाय नहीं है, यह एक अनुभव के बारे में भी है। प्रतिनिधि मारुति सुजुकी, बनास डेयरी, दूध सागर डेयरी और मुडेरा सोलर पार्क जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं, जो भारत का पहला सौर ऊर्जा चल विरासत स्थल है।
Truly, as Gujarat takes the vibrant summit beyond Gandhinagar into its vibrant regions, the Mehsana Conference is certainly setting a strong precedent. It's about inclusive development, regional pride and global outreach. So, whether it's cumin from the fields, innovations in engineering or the rich culture of North Gujarat, Mehsana is making headlines today. We will keep bringing you updates from the ground, but meanwhile, enjoy this energetic song.
हे अभी रुड़ी रात तुम्हें जो तो जरा हये रखे हम थोड़ू फरी लो जरा हे अभी रुड़ी रात तुम्हें जो तो जरा हये रखे हम थोड़ू फरी लो जरा समझे ना मन मारू खो आयो तन मारू आगे जो ढोल ना ढो समझे ना मन मारू खो आयो तन मारू आगे जो ढोल ना ढो हे हालो ने हालो ने हालो ने हालो हालो जट जट जट
And now moving on, today we are also observing World Post Day 2025, a day that honors one of the oldest and most vital public services in the world, the postal service. It's October 9th today, and that means it's time to recognize the incredible role that the post plays in our daily lives, from delivering birthday cards and love letters to connecting remote villages with the rest of the world.
डाक लाया खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया ढाकिया डाक लाया डाक लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया
तो विश्व डाक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पत्र केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि दिलों के बीच का जुड़ाव का सेतु भी है। और इस दिन के भरोसे और संवाद का प्रतीक है, जिसने दुनिया के हर कोने को एक धागे से बांध रखा है। लेकिन इसके बारे में आगे बात करें अनुजा, उससे पहले इतिहास के एक छोटे से पाठ के लिए भी हमें समय से थोड़ा पीछे चलना होगा। विश्व डाक दिवस विश्व डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ को दर्शाता है, जिसकी स्थापना 1874 में स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर बर्न में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और 1969 में टोक्यो में यूपीयू कांग्रेस में विश्व डाक दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई थी। तब से दुनिया भर के देश इस वार्षिक समारोह में शामिल होते रहे हैं और अक्सर अपने लोगों की बेहतर सेवा के लिए नए डाक उत्पादों और सेवाओं का अनावरण भी करते रहे हैं।
एंड नाउ फास्ट फॉरवर्डेड टू टुडे In 2025, and the theme for this year is one that truly captures the spirit of the modern postal service, post for people, local service, global reach. What does it mean? It means recognizing that post offices aren't just about mail anymore. They are lifelines, especially in remote communities. With over one third of the world still offline and half of small businesses not yet trading online, post offices are often the only public access point to digital services and the broader economy today.
बिल्कुल, और जरा सोचिए कि कई ग्रामीण कस्बों में स्थानीय डाकघर केंद्र हैं, न सिर्फ पत्र भेजने और प्राप्त करने के लिए बल्कि बैंकिंग, ई कॉमर्स, सरकारी सेवाओं के लिए भी, और यहां तक कि लोगों को पहली बार ऑनलाइन होने में मदद करने के लिए भी डाकघर थे। तो 2015 में विश्व के नेताओं ने सतत विकास लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में डाकघर की भी बड़ी भूमिका रही।
राइट, एंड सो फ्रॉम डिलीवरिंग मेडिसिन एंड बैलेट्स टू कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट्स एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सेस एजुकेशनल मटेरियल्स, पोस्टल नेटवर्क्स आर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब टूडे। सो नेक्स्ट टाइम यू पास योर लोकल पोस्ट ऑफिस, टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट वॉट इट रिप्रेजेंट्स, ट्रस्ट, कनेक्शन एंड एक्सेस।
बिल्कुल, और इसके साथ ही इस विश्व डाक दिवस पर आइए डाक कर्मचारियों, छटाई करने वालों, साइकिल और ट्रकों पर कुरियर पहुंचाने वालों का सम्मान करें। वे जो सुबह जल्दी उठते हैं और देर तक काम करते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, हम सभी को जोड़े रखने के लिए, चाहे दुनिया भर से आया कोई भी पार्सल हो या आपके पड़ोसी का पत्र ही क्यों ना हो, डाक हमेशा जनता के लिए है, स्थानीय सेवा के लिए है, वैश्विक पहुंच के लिए है, और यही डाक की सबसे बड़ी ताकत है।
The purpose of World Post Day is to create awareness of the role of the postal sector in people's and businesses' everyday lives and its contribution to the social and economic development of countries. The celebration encourages member countries to undertake program activities aimed at generating a broader awareness of their posts' role and activities among the public and media on a national scale. And remember, your local post office isn't just a place. It's a promise. Until next time, keep writing, keep connecting.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
And in this segment, let's first take you all to Puducherry. This October, the French Cultural Center in Puducherry, Alliance Francien, is turning its spotlight towards the Indian Ocean, celebrating the vibrant island of Reunion, a French territory located in the east of Madagascar and near Mauritius. Through a month-long series of events titled October, Month of Reunion Island, the institution invites audiences to explore the island's art, culture and enduring connections with India, especially with Tamil Nadu and Puducherry.
The celebration brings together exhibitions, film screenings, concerts, conferences and book discussions, each event revealing a different facet of Reunion Island's cultural richness. At the heart of the program are two evocative photographic exhibitions by Lauren de Gebhardt and Isabel Gomez. Together, they capture the soul of the island from its stunning volcanic landscapes to the vibrancy of its Creole traditions, offering visitors a visual journey into the daily lives and spirit of Reunionist people. Adding a musical rhythm to the celebrations, Reunionist artist Calf Maron brings his distinctive sound, a fusion of traditional Maloya and contemporary influences, through concerts and music workshops to be held at the French Pavilion, EFEO and other venues. The month also features an impressive lineup of talks and conferences by historians, writers and researchers from Reunion Island. Among them, Gilles Gavin and Gail Bellum explore the island's post-slavery history, women's destinies and the deep cultural links shared with India. Book discussions and writing workshops provide opportunities for the audience to engage with authors and artists from the island. Film enthusiasts are treated to the screenings of Reunionist cinema, showcasing the island's creative storytelling through films such as Les Petites Piaf, La Courmetrasserie and The Manor. Beyond the artistic showcase, the event is also a reminder of shared history. Generations of Reunion Island people have preserved their Tamil roots, evident in their language, cuisine, rituals and festivals. The events are open to the public and will be held at Alliance Francis Pondicherry with select programs at the University of Pondicherry, EFEO and Auroville. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
और इसके साथ ही बात अब चेन्नई की कर लेते हैं। दरअसल इस महीने के 7 से 9 तारीख तक चेन्नई में 3 दिवसीय वायु रक्षा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में 18 देशों के एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 5,500 से अधिक व्यावसायिक बैठकों में भाग लिया है। हमारे संवाददाता से और इसके बारे में जानकारी सुनिए।
The key themes of the convention were satellites and CubeSats, spacecraft manufacturers, ground segment systems and equipment, launch vehicles and subsystems, material and component suppliers, incubation and development, software and IT. A visit to the various pavilions revealed the state-of-the-art exhibits by the government and the private sectors. MSMEs, which are the backbone of the Indian industry today, also had pavilions. There were different pavilions like Indo-German, Indo-French and Indo-American Chambers of Commerce. Speaking to Akashwani Chennai, Sujata Ravishank, regional head of the Indo-American Chamber of Commerce, said that this was an opportunity for the traders to interact and become aware of the prevailing atmosphere in the United States. India has been moving fast in several aspects related to space sector, and one of the new state-of-art technology from India is refueling of satellites. In an exclusive, Komal Agarwal of Orbit Aid said that the robotic arm in their tanker satellite can be used for refueling and also clean a certain amount of debris in space. The convention was to facilitate several MSMEs and startups and also increase the investments and provide a trade-friendly atmosphere. In the inaugural speech, Director General of DRDO Dr. D.K. Das said that India is aiming for a $10 trillion economy to become self-reliant and appeal to the youth to make use of the immense opportunities available in the industry. Tamil Nadu has set a target of attracting investments to the tune of ₹75,000 crore by 2032. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
And Karishma, this is what Parikrama is really about. Okay. From where did we start? We started from Puducherry, then to Chennai, and now we are taking our listeners to Sikkim. Sikkimese filmmaker Tribeni Rai's debut film Shape of Momo, which explores the experiences of women navigating and negotiating social norms across generations, has won the Taipei Film Commission Award and the Songwon Vision Award in the Vision section of the recently concluded Busan International Film Festival. And according to the filmmaker Rai, she said that Busan gave credibility to their work. It is special for a film from Sikkim, which is in Nepali language, to be seen at such a platform. We have more on this from our correspondent.
The film talks about Vishnu, who returns to her mountain village after quitting her job. However, Vishnu ends up facing family pressures and societal expectations after her pregnant sister's arrival and a budding relationship with a boy. The story progresses to show how Vishnu struggles between her tradition and independence. Describing the film story as a quiet struggle, Rai told that we leave the places that shaped us in search of opportunity, freedom and a better life, only to find ourselves belonging nowhere. I am still caught in that in-between space, unable to decide whether to stay in my village or surrender to the city. Moinak Chatterjee from Akashvani Gangtok.
और बात जब प्रकृति और वन्य जीव की हो तो पूर्वोत्तर भारत के छोटे से राज्य मणिपुर को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रवासी पक्षी अमूर बाज, जो बाज परिवार का एक छोटा सा शिकारी पक्षी है, हर साल अक्टूबर में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के जंगल में रुकता है। वे वसा भंडार बनाने के लिए 3 से 4 हफ्ते बिताते हैं और प्रायद्वीपी भारत और अरब सागर में 5 से 6 दिन बिना रुके उड़ान भरकर अपने अगले पड़ाव सोमालिया पहुंचते हैं। इस प्रवासी पक्षी के बारे में और जानने के लिए हमारे इम्फाल संवाददाता जेजे थोकचोम के पास चलते हैं।
अमूर फैल्कन ब्रीड्स इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्दर्न चाइना बिफोर माइग्रेटिंग इन लार्ज फ्लॉक अक्रॉस इंडिया एंड ओवर द अरेबियन सी टू विंटर इन साउदर्न अफ्रीका। दिस ईयर फ्लॉक्स ऑफ अमूर फैल्कन हैज रीच्ड द जंगल ऑफ 2 villages ऑफ तमिलोंग डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर to Spain some days before non-stop flying across peninsula India and Arabian Seas to reach their next stopover, Somalia. This jungle is a crucial year-round roosting site for thousands of migratory Amur falcons, locally known as Aquipuina, during their journey from Siberia to southern Africa. The most important roosting villages in Tamil Nadu district are Chiluang and Gugram. To protect this migratory bird, villagers of Tamilung district deposited their air guns at the respective village authority. Every year, satellite tagging has been done on Amur falcon, and this year, the Manipur Forest Department, Wildlife Institute of India, along with local NGOs, has decided to tag the satellite transmitters on 3 Amur falcon. Awareness campaign has already been initiated to protect this migratory bird in the district. They have been constantly carrying out protection of this migratory bird since 2015. जेजे थोक्सोम आकाशवाणी न्यूज परिक्रमा इम्फाल।
और अनुजाब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
या सो वी टेल यू अबाउट द विमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया। वर 54 फॉर नो लॉस इन 9.3 ओवर्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन विशाखापट्टनम व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। अर्लियर साउथ अफ्रीका ऑप्टेड टू फील्ड आफ्टर विनिंग द टॉस विच वॉज डिलेड ड्यू टू रेन। And now coming to the business news of the day, benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty today extended their initial gains and closed around 0.5% up, with all sectors remaining in green. The Sensex gained 398 points to close at 82,172. Nifty also advanced 136 points to settle at 25,182.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
9th October is the death anniversary of a legendary freedom fighter, Dr. Saifuddin Kichlu, hailed as the hero of the Jallianwala Bagh protests against the draconian Rowlatt Act of 1919. Dr. Kichlu was also a founding leader of the Naujawan Bharat Sabha, which rallied thousands of students and young Indians to the nationalist cause. He was born on 15th January in 1888 in a Kashmiri family which had moved to Amritsar. A student of sharp intellect, Kichlu completed his bachelor's from Cambridge University in London and obtained his PhD from Germany.
His revolutionary aspirations dated back to his Cambridge days, when he actively participated in Majlis, a society formed by Indian students to discuss India's colonial wars. It was through these meetings that he met India's future Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Kichlu returned to India in 1913 and started practicing law in Amritsar. Professor Amandeep Bal, head of the Department of History in Guru Nanak Dev University, Amritsar, says, "After his return from abroad, one thing that stood out vividly was Dr. Kichlu's devotion and love for the nation."
Deeply influenced by Mahatma Gandhi and the national movement, Dr. Kichlu left his legal practice to join the cause. In March 1919, the Imperial Legislative Council passed the Rowlatt Act, which empowered the government to put people in jail without trial.
Dr. Saifuddin Kichlu was one of the leaders who protested against the legislation. Professor Amandeep Bal says Dr. Kichlu's oratory was very powerful.
On 9th April 1919, Dr. Kichlu and another freedom fighter, Dr. Satyapal, helmed an anti-government procession that progressed through the heart of Amritsar. The two leaders were arrested and interned in Dharamshala. On 13th April 1919, a meeting was called in the Jallianwala Bagh to protest the arrest. As the meeting was underway, British Brigadier General Reginald Dyer ordered his troops to open fire on the peaceful protesters. Dr. Kichlu suffered a cardiac arrest and passed away on 9th October 1963. On his death, Jawaharlal Nehru remarked that he lost a very dear friend who was a brave and steadfast captain in the struggle for India's freedom.
It was also on this day in 1942, freedom fighter from Punjab, Satyavati Devi, made a daring act of replacing the British flag with the Congress flag in Lahore jail. Popularly known as BG or Mataji, Satyavati had been arrested on August 26, 1942, along with her three young children. While in prison, she organized a protest over the deplorable conditions political prisoners were forced to live in. At 5 a.m. on October 9, 1942, she rallied fellow prisoners and replaced the British flag atop the women's jail with the Congress flag.
And today, India fondly remembers the legendary industrialist and his legacy. This legendary personality we are talking about is Ratan Tata, who was known for his humanity, humility and expansive vision. He served as the chairman of Tata Group and Tata Sons from 1991 to 2012, and he held the position of interim chairman Further, in 2000, he received the Padma Bhushan, the third highest civilian honor in India, followed by Padma Vibhushan in 2008. And during his tenure, the Tata Group acquired Tetley, Jaguar, Land Rover and Corus in an attempt to turn Tata from a largely India-centric group into a global business. Tata also donated $50 million to Harvard Business School, Harvard University, to establish an executive center, which is now called Tata Hall, that supports over 9,000 executive education students each year.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन को, वो नाम जिसने सुरों को नई पहचान दी. अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन ने अपनी दृष्टिहीनता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया और बचपन से ही भजन गाते हुए उन्होंने संगीत की राह पकड़ी और जल्द ही फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. सादगी, भक्ति और मधुरता, यही उनकी पहचान थी. आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ही उनकी यह कविता.
सांझ का पहला दीप जला तो मन में मिलन की आशा जागी, हर आहट पर ध्यान गया, ओ हर आहट पर ध्यान गया और दृष्टि पिया के पथ पर लागी.
So this was a poem in his voice, and he was awarded the Padma Shri in 2015 for his contribution to arts. And we have another song from his movie, for a very popular song. Let's listen to that one.
Sajna hai mujhe, sajna ke liye, zara ulji latte sawar do, har ang ka rang nikhar do ke sajna.
और इसके साथ ही आज ही के दिन जन्म हुआ था साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का. और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के उन विद्वानों में से थे जिन्होंने अपने लेखन से भाषा और समाज दोनों को नई दिशा दी. उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है. उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की झलक दिखाई देती है.
And today we also remember Gop Bandhu Das, popularly known as Pandit Utkalmani Gop Bandhu Das, the jewel of Utkal or Odisha, who was a social worker, reformer, political activist, journalist, poet and an essayist. In 1909, Das established a school of Sakhi Gopal near Puri and popularly known as Satyabadi Bana Vidyalay, but called the Universal Education League by Das, it was inspired by the Deccan Education Society, operated in the Gurukul tradition and aimed to impart a liberal education on a non-sectarian basis, despite opposition from Orthodox Brahmins at that time. And today we also pay tribute to Ustad Amjad Ali Khan, who was born today in 1945. Music is pure and beyond any manipulation, and it spreads joy and unity. It was the ability of creating compassion and harmony, which is not possible even for education at times. These were the words said by Sarod Maestro Ustad Amjad Ali Khan, and we are remembering him on his birthday today. This Indian classical sarod player, best known for his clear and fast ikhara tans, Khan was born into a classical musical family and has performed internationally since the 1960s. He was awarded India's Padma Vibhushan in 2001 and also Padma Bhushan and Padma Shri earlier.
और इसके साथ ही आज ही के दिन जन्म हुआ था राधेश्याम बारले जी का, जो कि प्रसिद्ध पंथी नृत्य के ख्याति प्राप्त नर्तक हैं. राधेश्याम बारले जी, उनकी पंथी नृत्य न केवल एक कला है बल्कि उसमें भक्ति, समर्पण और समाज के लिए संदेश भी निहित है. उन्होंने इस पारंपरिक नृत्य को नई पहचान दी और देश विदेश में प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति का परचम भी लहराया. उनकी मेहनत और समर्पण ने पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का काम किया है। तो राधेश्याम बारले जी को उनकी कला और योगदान के लिए भी आज भी नमन किया जाता है और कई सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुए हैं।
Yes, in 2021 he was awarded the Padma Shri by the Government of India for his contribution in the field of art, and Barley has made his contribution in promoting and disseminating the messages of Baba Guru Ghasidas through Panthi, a folk dance form in Chhattisgarh.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR पर। और इसके साथ ही
नमस्कार।